पूरा डांस का पूरा बदन और उसका छत्र है तो वो यहाँ तक खोल उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये खोलने का गुना उतना ही हो रहा जितना एक रंडी को हो रहा क्या आपने बिना असल फेर को ही समझ रखा निगाहें भी देना कर हाथ भी देना कर पैर भी देना कर जो लिबास जो सत्र बतला गए जो लिबास बता गए जो वदा कथा बता गए जो रहन सहन बता गए जो आदाब जिंदगी बता गए दुनिया कितनी कोशिश करे और दुनिया ये इल्म कितना ही तरक्की करे उससे अच्छा नहीं उससे अच्छा कोई नहीं और जो हुजूर से अच्छा किसी दूसरे इंसान के किसी फेल और कौल को किसी अमल को माने तो उसका हुजूर पे ही मानने हम तो हुजूर को आखिरी नबी मानते तो हुजूर की दो पोजीशन है एक तो नबी तो है ही लेकिन आखिरी नबी दूसरे सारे अंबिया नबी हैं लेकिन वो आखिरी नबी नहीं तो मोहम्मद मोहम्मदिया कितनी बड़ी किस्मत है कितना बड़ा इम्तियाज है कि उसको आखिरी नबी मिला हुआ है जिसके जरिए उसको हर अमल आखिरी तौर पर मिला हुआ है उससे अच्छा कोई अमल जो सजदा जो रुकू जो इबादत जो नमाज जो रोजा जो हज इबादत की जो जो चिंतें सबसे आला हो सकती थी जब उससे बढ़कर कोई शक्ल इबादत की वो हुजूर में थे कोई सोच सोच के पर जाए कि मैं इस तरह इबादत करूंगा तो वो इबादत हुजूर की इबादत से आला हो जाएगी हमारा ये यकीन है कि हुजूर के तरीके से पढ़कर अब न तरीका हो सकता न आएगा न कोई पैदा कर सकता न कोई सोच सकता न लिख सकता न हो सकता सबसे आला तरीका हो सकता चाहे हम अमल न करें ये हमारी नालायक महरूमी की बात लेकिन हमारा अकीदा यही है कि सबसे अच्छे और आला उनकी हर बात अच्छी उनका हर कौल अच्छा उनका हर फेल अच्छा उनकी हर अदा अच्छी उनका हर अमल अच्छा उनकी हर इबादत अच्छी उनका हर मामला अच्छा वो मईशत के बाब में माशरत के बाब में जो भी हिदायत दे रहे हैं उससे अच्छा आज दुनिया परेशान है मंदी चल रही घाटा हो रहा क्यों क्यों हो रहा वो कह गए थे कि सूद हराम उसी की लानत है कि बड़े बड़े बैंक फेल हो रहे हैं आज समझ में आ रही है खुद आपके यहाँ का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है आज इस्लाम का नाम लेने में तो लोगों को जरा तकल्लुफ होता है लेकिन कह ये रहे हैं कि भाई गैर सूदी निजाम लाओ बैंक को गैर सूदी निजाम बैंक उससे बड़ा फायदा हो तुम्हें अरब कंट्रीज की बड़ी करेंसी मिल जाएगी बहुत पैसा जमा हो जाएगा जरे मुबादला तुम गैर सूदी बैंक ये आप समझ चूंकि वो एक माहिर इक्तिसादियात हैं इस वक्त आपके यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं वो वर्ल्ड में माहिर इक्तिसादियात माने गए हैं तो ये जो माहिर होगा वो ही तो समझेगा कि इस्लामी इक्तिसादियात में जो खूबी है और जो दुनिया में मुसीबतें आ रही हैं वो सूद की वजह से आ रही हैं जब तक उसको नहीं छोड़ोगे कोई खैर बरकत नहीं आएगी तुम्हें बाजार तो नफा दिख रहा है 100 रुपए के 125 आ गए लेकिन वो 25 कितने खतरनाक है उसको तुमने तो वो 25 कितने खतरनाक उसको पैगंबर की आंख देखती पैगंबर का दिल समझता है पैगंबर का कलाम और उसकी लाई हुई किताब समझती है तभी तो उसने कहा कि अहल अल्लाह वो हरम अरेबा क्या जरूरत है कुरान पर हरम अरेबा कहेंगे कोई तो उसमें फसाद होगा तभी तो कुरान मजीद ने उसको हराम करार दिया है ना लोग तो ये कहते हैं तुम्हारी रोज सूद की कारोबार कैसा है जैसे बैग का कारोबार देखो हम एक चीज 12 रुपए की ला कर 15 रुपए बेच सकते हैं तो 12 रुपए किसी को देकर एक महीने के बाद 15 रुपए के भी ले सकते हैं जब हम एक मकान लेकर किसी को किराए पे दे सकते हैं तो उसका किराया ले सकते हैं, तो हम अपने लोगों का किराया क्यों नहीं ले सकते कि 100 रुपये हमने दिए उसका किराया हम 125 रुपये के रूप में ले, ऐसा ऐसा मुआवजा करते थे। अल्लाह का कानून हर हमारे बात तो क्या समझे, तो क्या समझे, एक हाकिम ना कलाम, उन्होंने हकीमाना जवाब नहीं दिया, हाकिमाना दिया, लेकिन जब उसकी तह में जाओगे तो मालूम होगा कि हकीमाना जवाब भी उसी में आज उसे महसूस कर रहा है। इसकी वजह से ये तलाश हो रहा है, बैंक फेल हो रहा है, दुनिया की मीशत डाउन हो जाती है,
वो पैगंबर हमें मिल चुका, वो आ चुका, अब जो कोई अच्छी चीज उससे बाकी ही नहीं है तो फिर दूसरे के आने का सवाल ही नहीं हो। अल्लाह ने कह दिया हमने तुम पर मुकम्मल कर दिया, अब कोई तकमील कर अल्यौम अकमल तो लकुम दीनकुम, हमने दीन को उसके सारे शोबों को उसकी सारी हिदायात को उसके सारे अमाल को उसके सारे अखलाक को हमने पूरा का पूरा आपके जरिए भेज दिया, इसीलिए अब हम कोई दूसरा नहीं भेजेंगे, इसलिए उससे अच्छा मान हम निज़ाम भेजने नहीं चाहते है ही नहीं, हमने आखिरी निज़ाम आपके सर, वो उम्मत कितनी खुशकिस्मत है जिसको ऐसा पैगंबर मिला हुआ है जो आखिरी पैगंबर, उसकी हर बात आखिरी, हर चीज़ क्वालिटी है उसकी, वो हर चीज़ उसकी इतनी बड़ी हुई है कि उससे अच्छी कोई चीज, और अब तो दुनिया एतराफ कर रही है, अब चूंकि दुनिया न्यूट्रल हो गई है पढ़ पढ़ कर और साइंटिफिक हो गई है, तो अब तो हुजूर की एक एक सुन्नत की खूबियां खुद साइंस वाले लिख रहे हैं, हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो हमारे खिलाफ थे वो लिख रहे हैं कि इन इन चीजों में ये फायदा, ये जो हमें भी मालूम नहीं था कि इन चीजों में ये फायदा, वो लिख रहे हैं कि इन चीजों में क्या क्या फायदा, हम तो उसे ऐसे ही समझते थे, ऐसा ही समझते थे कि हुजूर ये क्या क्या कहें, खाने के बाद उंगलियां चाट लिया करो, ये कैसे लोग थे अरब वाले कि खाने के बाद उंगलियां चाट, अब वो खुद लिख रहे हैं कि उंगली चाटने से खाना हजम होता है, खुद लिख रहे हैं। हुजूर की किसी बात को कोई कंडम कर ही नहीं सकता, चाहे कयामत तक साइंस आसमान पर पहुंच जाए, हुजूर की बात को कंडम कोई नहीं कर सकता, वो खुद कंडम हो जाएगा अगर हुजूर की बात को कंडम कर, आज नहीं तो कल कंडम हो जाए, कितने कानून हैं जिन पे हंसा जाता था इस्लाम के कानून पर, आप वो खुद मान रहे हैं कि इस्लाम के कानून, लोग उसे गलत समझते थे आज वो सही समझ रहे, मजबूर हो रहे हैं। तो जिस कौम के पास इतना आला पैगंबर मौजूद हो, आखिरी पैगंबर मौजूद हो, उसकी तालीमात मौजूद हैं, वो उसकी तालीम को हासिल ना करे, उसको इख्तियार ना करे, उससे ज्यादा महरूमी क्या हो। तो चूंकि हुजूर की दो हैसियत है, एक नबी होने की हैसियत और एक आखिरी नबी होने की, एक नबी होने की हैसियत, एक खातमुन नबीजीन होने की हैसियत, कि आप पर नबुव्वत खत्म हो गई, यानी आप आखिरी नबी हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा, जब ये दो हैसियतें आपकी है, एक नबी होना और एक आखिरी नबी होना, तो हमारी भी दो ड्यूटी है, एक बहसियत नबी होने के और एक बहसियत खातमुन नबीयीन की उम्मत होने की। हुजूर की जब दो हैसियत है, एक लफ्ज नबुव्वत की हैसियत और एक खत्म नबुव्वत की हैसियत, कि वो आखिरी नबी हैं, कयामत तक जो भी लोग आएंगे उनके लिए रोशनी आप ही की है, कोई और बल्ब नहीं चलेगा, इसी रोशनी से हिदायत हासिल करनी पड़ेगी, कोई और रोशनी जगमगाने वाली नाजिल होने वाली नहीं है, ये लास्टली रोशनी है, ये पूरी दुनिया को पावर कराना पड़ेगा कि आप आखिरी नबी हैं, आपकी रोशनी आखिरी रोशनी है, आपकी किताब आखिरी किताब है, आपकी इबादत आखिरी इबादत है, आपकी तहजीब आखिरी तहजीब है, आपके अखलाक आखिरी अखलाक हैं, आपके अकायद आखिरी अकायद हैं, इससे बढ़कर कोई अकीदा नहीं हो सकता जो अकीदे आप देकर, इसके खिलाफ कोई अकीदा निकालेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। तो दो ड्यूटी है, एक तो आखिरी नबी होने का क्या फरीजा हम पर आयद होता है, जब हम आपको आखिरी नबी मानते हैं तो आखिरी नबी मानने से हमारे ऊपर क्या फरीजा आयद होता है, और हम आपको नबी मानते हैं तो नबी मानने की वजह से हम पर क्या फरीजा आयद होता है। आपकी दो हैसियतों की वजह से हमारी दो ड्यूटीज हैं, दो फराइज हैं जिनको हमें अंजाम देना है, तब तो हम कह सकते हैं कि हम आपको नबी मानते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि हम आपको आखिरी नबी मानते हैं। अगर वो दो ड्यूटियां हम अंजाम ना दें तो चाहे जबान से हम ना कहें, हम पे कुफर का फतवा ना लगे, लेकिन अमलन हम इनकार कर रहे हैं आपकी नबूवत का, हम इनकार कर रहे हैं आपके खत्म नबूवत। वो दो ड्यूटियां क्या है जिनका पास रखना है, जिनका लिहाज रखना है, जिस फरीजे को अदा करना, जिसकी वजह से हम आपको नबी और आखिरी नबी मानने वाले कहला सकते हैं और ये दावा कर सकते हैं कि हुजूर हमारे नबी हैं और हुजूर हमारे आखिरी नबी हैं। वो दो ड्यूटियां क्या है? जब दो हैसियतें नबी की हैं तो हमारे ऊपर भी दो ड्यूटियां लाजिम आए। वो दो ड्यूटियां क्या है? एक ड्यूटी तो ये है कि हम नबी की हर तालीम को कयामत तक महफूज रखें, उसका सामान करें, उनका कुरान जाया ना हो, वो कुरान लेकर आए, उनकी अहादीस जो उन्होंने बातें कही हैं, कुरान को जिन बातों से समझाया, हम हदीस की हिफाजत करें, हम कुरान की हिफाजत करें, हम इस्लामी कानून की हिफाजत करें, हम इस्लामी माशियात की हिफाजत करें, मईशत की हिफाजत करें, माशरत की हिफाजत करें, इस्लामी मामलात की हिफाजत करें, आदाब ज़िंदगी को, या हुजूर जितनी तालीम दे गए हैं उसकी हम हिफाजत करें, तब तो हम आपको नबी मानते। नबी मानने के क्या हम आपको रहबर मानते हैं, तो रहबर जो साइड जाने को कहे कि वो इधर जाता है, तुम्हें अस्पताल जाना है ना, तो अस्पताल का रास्ता ये है, उस रास्ते पर चलोगे तभी तो अस्पताल पहुंचोगे ना। तो नबी जो भी हिदायतें दे गया है उसकी हिफाजत कर, उसकी हिफाजत किस तरह होगी? मदरसे खोल कर। कुरान की हिफाजत कैसे होगी? मदरसा खोल करो, मदरसे में जो बच्चे आएंगे वो कुरान को सीने में जमा करें, 4 बजे रात से उठेंगे, रूखा सूखा खाएंगे, इसलिए कि उम्मत तो अच्छा खिलाने वाली नहीं, अगर उम्मत तो अच्छा खिलाती है इंजीनियर बनने वाले को, अच्छा खिलाती है डॉक्टर बनने वाले को। अभी मैं कहाँ बैठा हुआ था, वहाँ बात चल, हाँ इंदौर बड़ौदा, तो वो कह रहे थे कि इतना तो बच्चा पहले दूसरे क्लास में पढ़ता है, महीने का 45,000 रुपये खर्चा आ रहा है, 45,000। ये जिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है उस पर 45,000 रुपया खर्चा, उसके उसका यूनिफॉर्म, उसको ले जाने वाली गाड़ी, लाने वाली गाड़ी, फिर जो स्कूल है वो बड़ौदा का बिल्कुल ऐसा क्रीम स्कूल है जहाँ हर आदमी दाखला चाहता है, वहाँ दाखला ही मुश्किल से बनता है। 45,000 रुपया खर्च हो रहा है पहले क्लास की तालीम पर। मेरे दिल में आ रहा था कि काश इस वक्त किसी मकतब में पढ़ने वाला बच्चा यहाँ मौजूद होता जिस पे एक पैसा भी खर्च नहीं आ रहा, उसे किताब भी फ्री मिल रही, कुरान मजीद भी फ्री मिल रहा है, कपड़े भी फ्री मिल रहा है, इलाज भी फ्री मिल रहा है, रहना कमरा भी फ्री मिल रहा है, बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, खाना भी फ्री, कोई खर्चा उसके माँ बाप का नहीं आ रहा। वो बच्चा अगर यहाँ होता तो मैं ज़रा इसका मुकाबला करा देता, मुकाबला करा देता इससे, एक बात इससे पूछता है, किससे पूछता है, ये मेरा यकीन था कि वो जवाब नहीं दे सकता जिस पर आप इतना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन किया जा रहा क्यों? कि उसकी वक़्त है दे, उसकी वक़्त है दे। अभी रेल में हम बैठे थे कि एक बहुत बड़ा इंजीनियर हमारे साथ सफर में था, जो ये कह रहा था कि मैं कितनी मरतबा जापान और कोरिया और चाइना और दुनिया के 100 मुल्क मेरे घूमे हुए हैं, और मैं इतना बड़ा करोड़पति अरबपति, खुदा जाने कौन कौन सी कंपनियों का मैं क्या क्या हूँ, अल्लाह जाने, वो पूरे रास्ते वो तारीफ कर रहा था। तो उससे कहीं मैंने ये पूछा, ये जानने के लिए कि ये इतने तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे हैं तो इनकी ज़हनियत क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि ये चाइना ने इतनी तरक्की कैसे करी, चाइना का माल आजकल पूरी दुनिया में पॉपुलर है, बड़ा सस्ता बेच रहा है, अजीब गरीब चीज़ें बना रहा है चाइना, तो तुम तो 50 दफ़ा चाइना गए तो तुम्हारा क्या इंडिया है, क्या तुमने क्या महसूस किया चाइना की तरक्की का राज कायम है मुजमर। तो वो मुझे कह रहा है कि मौलाना हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे धार्मिक गुरु, हमारे साधु संत और तुम्हारे भी साधु संत हमें इसमें लगाए रहे कि अल्लाह को खुश करो, इबादत करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आखिरत की मोक्ष सोचो, हम इसी में घुल घुल के घुट घुट के जहाँ थे वहीं रहे। उन लोगों ने ये सब छोड़ दिया और वो तो ये सोच रहे हैं आला से आला माल बनाओ, लग्जरी जिंदगी गुजारो, शानदार टेक्निकल दुनिया में लाओ और दुनिया का सामान बनाओ और उसमें तरक्की करो। उन्होंने उसको अपना आइडियल बनाया तो आज वो आसमान पर पहुंच गए और हम जो है जहाँ थे वहीं रहे। हमारे पूर्वजों ने हमें यहीं मस्जिद मंदिर में घुमा घुमा के बेकार कर, ये वो कह रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये जो आला तालीम है इनको ये तालीम कहाँ ले जा रही है। वो गोया अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और लग्जरी जिंदगी और आराइश का सामान, नई नई ईजाद को ही इंसानियत की मेराज समझ रहे, उसी को मेराज समझ रहे। अगर अखलाकी कुव्वत नहीं होगी, मजहबी कुव्वत नहीं होगी, खुदा का खौफ नहीं होगा, तो करोड़ों रुपए खर्च करके जिसको डॉक्टर बनाया है वो अल्लाह की मखलूक को लूटेगा बैठकर। वो मरीज को पेशेंट नहीं समझेगा, उसको गाहक समझेगा, कस्टमर समझेगा। चाहे तुम्हारी जान निकल रही हो वो आपके साथ कोई रियायत नहीं बरत सकता, इसलिए उसको तो बंगला बनाना है ना। ये कौन सिखाएगा कि इतना इल्म हासिल करने के बाद वो इंसानियत तो नहीं दिल में से चली गई, वो तो मजहब ही सिखा, वो तो खुदा का खौफ ही सिखा, वो तालीम तो मस्जिद ही थे, वो तालीम तो पैगंबर ही देख कि एक दूसरे पर आप मेहरबान रहे। इतना सब सीखने के, आप अच्छे बंगले में रह रहे हैं लेकिन एक झोपड़पट्टी में रह रहा, आप खा रहे हैं वो भूखा सोया हुआ, आप तो कह रहे हैं कि सोने दो उसको, उसने क्यों मेहनत नहीं की। मजहब ये नहीं सिखाता, मजहब तो ये सिखाता है कि तुम चाहे न खाओ सामने वाले को खिलाओ। ये जज्बात कहाँ से आएंगे अगर मजहबी तालीम नहीं हो, अगर ये जरूरी नहीं होती तो अल्लाह पैगंबरों को क्यों भेजे, अल्लाह कुरान को क्यों नाज़िल करे, अल्लाह जन्नत दोज़ख़ का तज़किरा क्यों करते। अगर यही जन्नत दोज़ख़ है जो तुमने दुनिया देख रखी है उसी को जन्नत बनाने में लगे, अरे एक जन्नत और है, जब वो देखोगे तो वहां के फटी की फटी रह जाएंगे। जन्नत का मकान देखते ही ऐसा लगेगा कि दुनिया के बंगलों को हमने मकान कहा, ये हमारी बेवकूफी थी, वो तो मकानियत थी, उसको मकान किसने कहा, मकान ये एक एक सेकंड में कलर बदल रहा है। जन्नत का मकान अभी हरा है, पीला हो गया, लाल हो गया, एक एक मिनट में पूरे मकान का कलर, और वन पीस था, दुनिया में कोई वन पीस मकान नहीं मिल सकता, पूरी बिल्डिंग एक ही पत्थर की, एक ही मूर्ति की, लाइनों लाज वाला उजनों समझ वाला ये दोनों बताशत वाला खतर वाला कल भी बशार, ऐसी नेमतें वहां मिले। दुनिया के करोड़ों किस्म के केले खा लीजिए लेकिन जब जन्नत का केला आएगा तो उसको पता चलेगा कि वो तो केलियां थी, हमने उन्हें केला बेवकूफी से केला समझ रखा था, केला तो ये। वहां का लिबास, वहां का मकान, वहां की राहतें, उसके मुकाबले में अल्लाह ने छोड़ रखा है कि तुम कयामत तक साइंस का दिमाग दे दिया, तरक्की करो करो करो, कितना करोगे? जब बिल्कुल कयामत के करीब आगे हाथ उठा लोगे कि बस हम तरक्की कर चुके, अब इससे अच्छा नहीं बना सकते, वो पूरी दुनिया को ऑफ करके फिर अपनी जन्नत दिखाएंगे कि तुमने जितनी तरक्की करोड़ साल में की थी, इसके सामने वो कहती है तरक्की की कुछ भी। आप उनकी मुट्ठी माँ उखरी अलम, कुरान ने कहा हमने तुम्हारे लिए जो नेमतें जन्नत में छुपा रखी अभी हम खोलते नहीं है, जब हम वहां खोलेंगे तो उसे देखकर दुनिया की सारी चकाचौंध तुम्हारे आगे बिल्कुल हड्डी का टोकरा हो जाएगी। क्या हम बेवकूफ थे कि उन खानों को, उन मकानों को, उन कपड़ों को, उन राहतों को, उन आरामों को हमने आराम समझा? आराम तो ये यहाँ तो आलाइश है, लगे यहाँ क्या क्या थूक है, बलगम है, खुजली है, आंख बीमार हो जाती है, ऑपरेशन हो रहे हैं टांग के ऑपरेशन, वहां ऐसी आंख मिलेगी जो कभी धुंधली नहीं होगी, कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा बदन मिलेगा जो कभी घिसेगा नहीं, पुराना नहीं होगा, ओल्ड नहीं होगा, करोड़ों साल गुजर के भी वो मैला और पुराना नहीं होगा। यहाँ ऐसी आंख है, ऐसा कान है, यहाँ तो 60 साल के बाद कान ही जवाब दे जाता मशीन लगाते फिट, वहां ऐसा कान मिलेगा जिसे मशीन की जरूरत है, जिसमें कोई नक्सी नहीं आएगा। ऐसी चीज कोई बना सकता है दुनिया में कि उसमें कभी नक्सी ना आए? अल्लाह ऐसी बॉडी देंगे जन्नत में, ऐसी नेमत देंगे, अभी तो तुम्हें बनाने को मोहलत दे रखी है कि बनाओ बनाओ, कहो ये उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, वो उससे अच्छा है, ये सवारी उससे अच्छी, ये सवारी अच्छी। जब सब बना के थक जाओगे, 1 करोड़ किलोमीटर 1 घंटे में सफर करने वाली सवारी तुम बना के और अब हाथ ऊंचे करोगे कि अब इससे ज्यादा तेज रफ्तार नहीं बना सकते, जन्नत में वो ऐसी सवारी देंगे कि ये सवारी कुछ भी नहीं। और यहां भी दे रखी, आसमान कितना ऊंचा, लेकिन यही निगाह 1 सेकंड में ऊपर देख ली, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, कोई गाड़ी उसे इतनी ऊपर जल्दी पहुंचा सकती? ये निगाह की रफ्तार है ना। अल्लाह ने यहां भी उसके नमूने दे रखे, यहां भी मौजूद है, उन्हीं को देख देख के ये यहां बनाती रहे, लेकिन जब हाथ उठा लेंगे कि अब इससे अच्छा हम नहीं बना सकते, इससे अच्छा कपड़ा आप नहीं बना सकते, हमने करोड़ों अरबों खरबों साल मेहनत की दुनिया में और यहां तक हम पहुंचे, अब इससे अच्छा हम नहीं बना सकते, फिर अल्लाह खोलेंगे वो, ठीक है देखो उससे अच्छे, उसको हैरत होगी। तो एक नेमतों की जगह और भी है, आपने सब कुछ इसको ही समझ लिया है, ये गलती, ये बातें कौन बताता है? ये बातें नबी बताता, ये बातें कुरान बताता, ये हुजूर की तालीमात बताती। तो हमें हुजूर की बातों को, उनकी तालीमात को, उनके कुरान को, उनकी हिदायत को महफूज करना है, तब तो वाकई हम आपको नबी मान रहे हैं। उसकी हिफाजत करना है, कैसे बुजुर्गों की एक एक चीज को महफूज रखते हैं, वही उनके कुर्ते का कपड़ा भी महफूज रख लो, और बताएंगे कि हमारे पास उनके कुर्ते का कपड़ा मौजूद है, उनकी मिसवाक मौजूद है, उनकी फला चीज मौजूद है, रखते हैं नहीं रखते? म्यूजियम में कितने कितने पुराने लोगों की चीजें महफूज है और उस पर फख्र करते हैं, लाखों में वो बिकती है कि ये वो कप है जिसमें गांधी जी ने चाय पी थी, ये वो कप है जिसमें आइजनहावर ने, जो अमेरिका का पहला सदर था, उसने चाय पी थी, उसको रखते हैं तो साफ हो जाते, रखते हैं नहीं रखते? तो पैगंबर से बढ़कर कौन सी जात हो? उसकी हर चीज को महफूज रख। और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत ने रिकॉर्ड तोड़ दी, हुजूर की हर बात को ऐसा महफूज रखा कि दुनिया की कोई उम्मत फील्ड में उम्मत मोहम्मदिया का मुकाबला ही नहीं कर सकती, जितना तहफुज इस उम्मत ने हुजूर की बातों का किया। आप हदीस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हुजूर की जिंदगी को इन लोगों ने कैसा महफूज किया। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुरान को इस उम्मत मोहम्मदिया ने कैसा महफूज किया। अगर किसी जगह राह की आवाज हुजूर ने मूठी निकाली है, उसको भी महफूज रखा और उसका कानून बना दिया कि यहां मूठी क्यों निकाली, और किसी जगह बारीक निकाली है तो वहां भी कानून बना दिया, और बारीक निकालने की मश करता है कारी कि यहाँ हुजूर ने बारीक निकाली। उनकी एक एक बात, पढ़ने की अदा, लबो लहजे की अदा, चलने की अदा, देखने की अदा, खोने की अदा, पीने की अदा, पहनने के, हत्ता के दाढ़ी और सर के बाल भी ऐसे गिंडाले के कोई पूछे कि हुजूर की रीस बच्चे में कितने बाल आखिरी उम्र तक सफेद हुए थे और कनपटी पे थे, वो भी उम्मत ने गिन कर लिख रखे। ऐसी किताबें मौजूद हैं कि उनके घोड़ों के नाम, उनके जानवरों के नाम, कितनी लुंगे थी, कितनी पैलेटें थी, कितने कटोरे थे, घर में क्या था, वो चीज कहाँ कहाँ बैठ के पेशाब किया, अगर सफर किया है मक्के से मदीने तो कितनी जगह पेशाब किया, कहाँ बैठ कर किया, उस तक को इस उम्मत ने महफूज कर रखा है। शाबाश उम्मत मोहम्मदिया कि किसी पैगंबर की उम्मत ने इतना इंटरेस्ट और इतनी दिलचस्पी अपने पैगंबर के साथ नहीं ली जितनी उम्मत मोहम्मदिया ने ली। अगर ये मदारिस ना हो तो ये चीजें आपको महफूज मिलेंगी कहाँ, सही कुरान महफूज कहाँ मिलेगा। आप जाकर देखें, जहाँ मदरसे नहीं है लोग कैसा कुरान पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है पढ़ते वक्त कि अल्लाह इसको खारिज कर दे, ये मुझे बिगाड़ के पढ़ रहा है। तो सही अच्छा कुरान कहाँ मिलेगा, जहाँ मदरसा होगा। हुजूर की हदीसें कहाँ मिलेंगी, मदरसे में मिलेंगी। हुजूर के तरीके कहाँ मिलेंगे, मदरसे में मिलेंगे। इस्लाम का कानून कहाँ पढ़ाया जाता है, इस्लामी लॉ कहाँ पढ़ाया जाता है, शुरू से आखिर तक। तहारत का लॉ क्या है, नहाने धोने का लॉ क्या है, खाने पीने का लॉ क्या है, मामलात का लॉ क्या है, खुशी हंसी का लॉ क्या है, शादी ब्याह का लॉ क्या है, मस्जिद का लॉ क्या है, ये जो कानून है ये आपको कहाँ मिलेगा, कौन हिफाजत कर रहा है, कौन रात दिन इसको पढ़ रहा है, कौन इस पर किताबें लिख रहा है, कौन तलबा को समझा रहा है। मगर तो अगर आप नबी की पैगंबरी के कायल हैं और ये कहते हैं कि हुजूर हमारे नबी हैं, तो हुजूर की हर बात को सीखने के लिए, महफूज करने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए मदरसे खोलो। अगर मदरसे खोलोगे तब तो आप वाकतन हुजूर को नबी मानते। नबी मानना क्या, उनको आइडियल मानना, उनको रहनुमा मानना, उनको नमूना मानना। तो वो नमूने महफूज होंगे तभी तो मानोगे और उस पर अमल करोगे। महफूज तो मदरसे होंगे। आपका वजू टूट जाए, क्यों टूट गया, हमने नमाज में कैका लगाया तो ना पेशाब निकला, ना पाखाना निकला, ना री निकली, ना खून निकला, ना पीप निकली, कुछ भी नहीं निकला, फिर कैके से नमाज क्यों टूट गई, वजू क्यों टूट, क्यों टूट गया, अकल तो काम नहीं कर। एक किलो पाखाना पेट में भरा था, गए पूरा निकाल आए, जिस जगह से निकला था उसको खूब अच्छी तरह धोया है, बाहर आके साबुन से धो लिया, अब वजू काय को करें साहब, वजू काय को करें। अरे अंदर था जब तक तो वजू नहीं करवा रहे थे, और जब बाहर निकल गया, जिस रास्ते से निकला उसको धो लिया, बाद में तो लोटा भी मांजते हैं, लोटा भी मांज लिया, सब धो लिया, अब वजू काय को हो रहा, यहाँ सर पर मसा क्यों हो रहा, क्या सर से पखाना निकला था तो सर पर मसा हो रहा, कानों में यूं कर रहे हो वजू में तो कान से पखाना निकला था, कान से क्यों वजू कराया जा रहा है, वजू में लिहाजा क्यों धुलवाए जा रहे हैं, नजाफत तो बाहर निकल गई, अंदर थी जब तो कुछ नहीं कराया, लिए फिर रहे थे वही भरी भराई से नमाज पढ़ा रहे थे, और जब निकल गई तो कह रहे वजू करो, वजू टूट गया, अरे भाई काय को टूट गया, ये कौन बताएगा, मदरसे वाले बताए, इसलिए कि दिन रात वो यही धंधा कर रहे हैं, वो यही पढ़ रहे हैं, इसी को उन्होंने फन बनाया। तो मदारिस नहीं कायम करोगे तो इस्लाम महफूज कैसे रहेगा, कुरान महफूज कैसे रहेगा, हदीस महफूज कैसे रहेगी, इस्लामिक कानून महफूज कैसे रहेगा, कहाँ सीखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। फिर आप नबी को नबी मान रहे हैं, तो मदारिस खोलना जरूरी है अगर आप नबी को नबी मान, और अगर आप नबी को खातबुन नबीन मानते हैं कि उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, अगर ये आपका यकीन है, और है जो ये यकीन ना करे वो तो काफिर है, सबका फतवा है बिल-इत्तेफाक कि जो हुजूर की खत्म नबुवत का कायल ना हो उस वो काफिर, जो इसका इजहार करे उसका निकाह भी टूट गया, जितनी इबादतें अब तक की थी सब मिस हो गई। ये मेन अकीदा है इस्लाम का कि हुजूर आखिरी पैगंबर हैं, अब कोई नबी नहीं आएगा। जब आप आखिरी नबी मानते हो और कोई नबी अब नहीं आएगा तो उनका काम कौन करेगा? आप करेंगे, लिहाजा तबलीग जरूरी। अगर आप आखिरी नबी मानते हो तो उसका सबूत तबलीग करके करो कि हुजूर तो अब चले गए, ये कौन तुम्हें बताएगा? हम घर घर फिर कर बताएं जो काम हुजूर, घर घर फिर कर, गली गली फिर कर, आदमी आदमी के पास जाकर समझाते थे। अब वो नहीं रहे और वो आखिरी थे, और अब कयामत तक उस मिशन को आपको चलाना है तो आखिरी नबी होने का सबूत इस तरह दिया जाएगा कि आप तबलीग कीजिए, आप तबलीग में निकलिए, अपने भाइयों तक ये बात पहुंचाइए कि मैं तो तुम्हारे पास नहीं आता, नबी पहुंचाता, लेकिन अब नबी तो आएगा नहीं तो मुझे आना पड़ा, मैं नबी को नहीं मानता हूँ, आखिरी नबी मानता हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तबलीग करें। तबलीग करना ये अलामत है इस बात की कि तुम्हारा ये अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी। कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होता कि खत्म नबूवत पर कॉन्फ्रेंस कर ली, उससे काम नहीं चलेगा। खत्म नबूवत पर सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस ये है कि आप तबलीग कीजिए, वो अलामत है इस बात की कि आप हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं और ये जानते हैं कि हुजूर अब के बाद अब कोई नहीं आएगा, तो ये काम हमें करना। हम लोगों को बताएं कि अब नबी तो बताने आएगा नहीं, हम घर घर जाएं। वो आता था, घर घर जाता था, लोगों के पास पहुंचता था, अब वो नहीं आएगा तो हमें पहुंचना था। तो ये दो फरीजे, खत्म नबूवत पर दलालत करती है तबलीग, और नबी मानते हो इस पर दलालत करता है आपका मदरसों का निज़ाम, हुजूर की तालीमात का तहफ़्फ़ुज़। तो मदरसे खोलो, उसमें पैसा लगाओ, वही पैसा क़यामत में काम आएगा। जिन मकानों में मेहमान रसूल रहकर जाएंगे, जिन कमरों में ताज्जुब है इतना बड़ा गुनाह और उसके अतराफ़ इतने लोग लगे, एक पाँच छः कमरों की छत नहीं डल पा रहे। अरे साहब गरीब आदमी है कहाँ से? अरे कोई गरीब नहीं, छः छः लाख, पाँच पाँच लाख रुपया शादियों में खर्च हो रहा है, रोराया नहीं हो रहा। वो उस वक्त कहाँ से आ जाता जब औरतों से ये कहो कि ज़कात निकालो, कह रही हो हम कहाँ से ज़कात निकालें? वो हमारा आदमी हमें दो पैसे नहीं देता, कहाँ से ज़कात निकालें? और हमें तुम कमाने जाने नहीं देते तो हम ज़कात कहाँ से निकालें? हम हमारे पास रखा क्या है कि ज़कात निकालें? और जहाँ कपड़ा बेचने वाले ने आवाज लगाई महल्ले में कि कपड़ा ले लो, तो वो ही कल्लास औरतें बाहर निकला और कपड़े की खरीदारी शुरू हो जाए। अब पैसा कहाँ से आ गया? वो तो तुम्हें ठंडी नहीं देता था, अब ये 40 रुपए का कपड़ा कहाँ से खरीद लिया? मालूम है पैसा तो है, पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा है। जब कपड़ा बेचने वाला आएगा तो सारे पैसे निकल आएंगे अंदर, जब भाई की शादी होने लगे तो पैसा निकल आएगा, बहन की शादी होने लगे तो गिफ्ट देने के लिए पैसा निकल आएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि 10 रुपये मदरसे को दे दो, तो हम तो फकीर हैं, कल्लाश हैं, 72 साल से भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ से? ठीक है मरते रहो, अल्लाह का काम रुकता नहीं है, जितना अभी बन गया आगे भी वो बनवा देंगे, वो जिसको चाहेंगे तौफीक दे देंगे। बार बार जगह तो मैं देख रहा हूँ गैर मुस्लिम थैलियाँ ले लेके आते हैं, हमारा पैसा कबूल, हमारा पैसा, वो उनसे मदद करा दे, वो उनसे मदद करा दे, वो उठते हैं मदद करते। सन 1970 में मैंने एक इज्तिमा अपनी बस्ती में किया, मैंने एक अपनी बाद मजबूरियों की वजह से 4 महीने में मदरसे नहीं गया, छुट्टी ले ली थी, तो लोगों ने मुझसे कहा आप यहीं हैं तो एक इज्तिमा कर लो। मैंने एक इज्तिमा किया और उसमें पानी निकालना था, कुएं से पानी की प्रॉब्लम थी, तो कितने मुसलमानों के पास पंप थे, पानी खींचने के ज़राए थे, सबसे देख लिया टटोल के किसी ने भी नहीं दिया पंप। मैंने कहा भाई पानी अच्छी कुएँ पर डालो, और जमात वाले तो बेचारे कहते नहीं है कि तुम हमें बाहर कह दो, वो तो खुद बाल लेंगे काम कर लेंगे, उन्हें तो अपना काम करना है, ये काम तो वो साइड का काम समझते हैं, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा कि एक गैर मुस्लिम बिल्कुल आखिर टाइम मेरे पास आया और मुझसे आके कहा कि मैंने सुना है कि आप पानी के मसले में परेशान हैं, आपको पानी खींचने वाली मशीन नहीं मिल रही, तो सुनो मेरे खेत के कुएं में पानी खींचने की मशीन इंतहाई गहराई पे लगी है, फिट लगी है, वो सीमेंट से कसी हुई है। मैं उसको वहां से खोद के निकालूंगा, मेरे आदमी निकालेंगे, मेरे आदमी उसको लाएंगे, मेरे आदमी कुएं पे फिट करेंगे, मेरे ही आदमी उसको चालू करेंगे, जितने दिन इज्तिमा रहेगा वो पानी खींच के आपकी टंकियों में भरेंगे, और जब इज्तिमा खत्म हो जाएगा तो वो ही यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और वहां लगाएंगे, आपको ना लाना है ना ले जाना। चुनाचे उसने ऐसा किया, उसकी मशीन आई, लगी और पूरा इज्तिमा हुआ। देखिए अल्लाह को काम लेना होता है, किसी के भी दिल में वो डाल देता है। और एक ऐसा शख्स जो मोमिन भी नहीं है, वो किसी भी अच्छे काम में साथ देने को अपनी सादत समझता है, तो अल्लाह को तो अपना काम लेना है, नहीं देना मत दो। मस्जिद बनवानी थी बनवा दी, आधी रह गई थी वो पूरी करा दी, वो हॉल नहीं था वो बन गया, चारपाइयां नहीं थी बच्चों के लिए चारपाइयां बन गई, मतबख नहीं था मतबख बन गया, गल्ला नहीं था गल्ला आ गया, और कमरों की जरूरत है ये है वो तो बनवा ही देगा, लेकिन आपका भी कुछ, आप भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखा, आप भी अपना पैसा लगा। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 लाख ही रुपया दें, 5 रुपये भी दे देंगे तो अल्लाह के यहाँ इखलास के, मेहनत के, गाढ़े पसीने के, हलाल कमाई के 5 रुपये की भी बहुत कीमत है। छोटा सा भी देते छोटा सा वो भी देते। हदीस में है कि अगर कोई एक चिड़िया का नाम हदीस में आया जो बहुत छोटी चिड़िया, ये जो चिड़िया है ये चिड़िया तो बड़ी थी, इससे भी एक छोटी चिड़िया होती है, उसका नाम आया हदीस में, जो इस चिड़िया के साथ एक नहीं आता उससे छोटी चिड़िया है। हुजूर भी अजीब मिसाल देते थे, हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई उस चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा तो उसको बहुत बड़ा महल जन्नत में उसके बदले में दिया जाए। अब मैं अपने दिल में सोचता था कि चिड़िया का घोंसला, और चिड़िया भी इस चिड़िया से छोटी, हुजूर फरमाया, और उसके घोंसले में से एक अंगूठा भी नहीं जाएगा, चह जाए कि इतने आदमी खड़े होकर उसमें नमाज पढ़े, और हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा तब भी उसके लिए एक बहुत बड़ा महल जन्नत में बनाया जाएगा। अरे चिड़िया का घोंसला तो इतना, उसकी शरह देखी कि आखिर क्या लिखा है उसमें, हुजूर क्या मिसाल दे रहे हैं। तो लिखा है कि चिड़िया के घोंसले की मिसाल देकर हुजूर ये फरमा रहे हैं कि जिसने छोटा सा छोटा भी हिस्सा मस्जिद बनाने में लिया, मसलन ईंट का इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया, या एक ईंट दे दी, या एक मुट्ठी बजरी दे दी, या एक मुट्ठी सीमेंट दे दिया, या इतना सा लोहे का टुकड़ा भी दे दिया, उसकी भी कीमत अल्लाह की। या कोई इतनी छोटी सी भी मस्जिद भी बना दे जिसमें 3 आदमी खड़े होकर, उस पर भी अल्लाह वो महल दे। हर आदमी की अपनी सख्त है, बड़ी मस्जिद हर आदमी तो नहीं बना सकता, लेकिन बनती मस्जिद में एक मुट्ठी वो तो दे सकता है, एक मुट्ठी तो दे सकता है, नहीं सीमेंट दे सकता है, बजरी दे सकता है। अल्लाह को गरीब की एक मुट्ठी सीमेंट भी कबूल है, उसके बदले में भी उतना ही बड़ा महल मिलेगा जितना कि पूरी मस्जिद बनाएगा। तो थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा बटाए। हम तो चाहते हैं कि ये गुनाह की एक मरकजी दरसगाह बने, एक बड़ा दारुल बने, इसमें सैकड़ों तलबा के रहने की सहूलत हो, और यहाँ के अतराज जवानिम में जितने बच्चे हैं जिनको तालीम की सहूलत नहीं है उनको मौका दे। बहुत से ऐसे हीरे जवाहरात गांव में पड़े हुए हैं कि उनको बेचारे ना तो वो स्कूल जाने की सलाहियत रखते, ना कॉलेज का खर्चा बर्दाश्त कर सकते, वो मुरझा कर रह जाते हैं, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चोर हो गया, कोई ताश खेलने लगा, कोई गांजा भंग पीने लगा, उनको कोई देखने वाला ही नहीं। अगर ये मदरसे खुलेंगे और वो तश्कील कर कर के उन बच्चों को लाएंगे तो बाजे बच्चे उसमें इतने होशियार होते हैं, उन लोगों के बच्चे जो भैंस चरा रहे हैं जिनके बाप दादों ने कभी इल्म देखा नहीं, उनमें भी ऐसे होशियार और दिमागदार बच्चे पढ़े कि 6-6 महीने में उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया, किसी ने 1 साल में कर लिया। किसी ने 6 महीने में कर लिया, किसी ने 9 महीने में हिज्र कर लिया। और हैरत हुई कि उस खानदान का बच्चा जिनके घरों में कोई आलिम गुजरा ही नहीं, कोई हाफिज गुजरा नहीं, तो ऐसे जवाहर पारे इन गांवों में और छोटी छोटी आबादियों में हैं। अगर किसी जगह मदरसा हो, वहाँ सहूलत हो, पढ़ाने वाले हों, तो यही हीरे और जवाहरात जो गुदड़ियों में छुपे हुए हैं वो बाहर आएंगे, वो आपकी क़यादत करेंगे, आपको इमाम मिलेंगे, आपको ईद पढ़ाने वाले मिलेंगे, आपको जुमा पढ़ाने वाले मिलेंगे, आपको तरावी पढ़ाने वाले मिलेंगे, आपको बच्चे को कान में अजान देने वाले मिलेंगे, और आपको जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले मिलेंगे, आपको निकाह पढ़ाने वाले मिलेंगे। क्या उम्मत की ये ज़रूरत नहीं? क्या उम्मत की बस ये ज़रूरत है कि साहब मलेरिया हो गया उसका इंजेक्शन लगा दे, फिर शुगर हो गई है उसका इंजेक्शन लगा दे और ऑपरेशन कर दे और दवा पिला दे, इसकी ज़रूरत है? और मोटर में बिठा ले और सड़क पे चला दे, भाई इन चीज़ों इंजीनियर की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, और कंपनी वाले की ज़रूरत है, और बेकरी वाले की ज़रूरत है, और सामान बनाने वालों की ज़रूरत है, और नमाज पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं, ईद पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं, कान से अजान देने वाले की ज़रूरत नहीं कि बच्चे कान में अजान दे, मैयत की नमाज पढ़ाने वाले की ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत है नहीं? कौन नमाज पढ़ाएगा? अगर एक भी हाफिज ना हो तो तराज कौन पढ़ाएगा? उसकी ज़रूरत नहीं? अरे उम्मत को जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, एक ताजिर की ज़रूरत है, एक काश्तकार की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, तो उसको इसकी भी ज़रूरत है कि एक इमाम हो, एक खतीब हो। ये ज़रूरतें कौन पूरी करे? अभी आपको इशा पढ़नी है, सब हाथ उठा लेंगे हमें नहीं पढ़ानी, तो कैसे पढ़ेंगे आप? अकेले अकेले पढ़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे? और जब अकेले ही अकेले पढ़ना है, मस्जिद की क्या ज़रूरत है? घर ही पढ़ लिया कर। ये मस्जिदों की आबादी इन्हीं अइम्मा से, ये अइम्मा को कौन पैदा करेगा? कौन पैदा करेगा? यही मदरसे पैदा करें, इन्हीं ने आज तक पैदा किया और यही आइंदा भी पैदा करेंगे। यहीं से मस्जिद के लिए इमाम मिलेंगे, यहीं से खतीब मिलेंगे, यहीं से ईदैन पढ़ाने वाले मिलेंगे, यहीं से आपकी मजहबी क़यादत करने वाले मिलेंगे, यहीं से मसला बताने वाले मिलेंगे, यहीं से आपकी मैयत को दफन करने वाले मिलेंगे, वरना मुर्दा भी सही दफन। इसी मुल्क में, इसी मुल्क में जहाँ 1926 से जमात का भी काम हो रहा है, सैकड़ों उलमा भी हैं, किताबें मिल गया, अभी भी ऐसे इलाके पड़े हुए हैं कि मुस्लिम मुर्दे जलाए जा रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि दफन किया जाए, अभी भी ऐसे इलाके में। और ऐसे इलाके हैं कि हकीकी मामू हकीकी भांजी से निकाह कर रहा है, उन्हें यही मालूम नहीं है कि भांजी से निकाह जाए। इसी मुल्क में, कोई दूसरी जगह की बात नहीं, ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं है। आप ये समझ लें कि बस इतने मदरसे तो हैं, आप क्या ज़रूरत? अरे गली गली ज़रूरत, गली गली मदरसे की ज़रूरत है। जब भी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, इतने अइम्मा की ज़रूरत है, इतने मुदर्रिस, यही देख लो ये लोग कह रहे हैं कि मुदर्रिस ही नहीं मिलते। कितने मदरसे खुले हैं लेकिन तलाश करो तो मुदर्रिस नहीं मिल रहे, मालूम हुआ कमी है। अभी और पैदा करना, वो पैदा यही मदरसे करें। अल्लाह ताला हम सब को इन मदारिस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, तबलीग की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इस्लामी उलूम और तहजीब की, आमाल की, अखलाक की, अकायद की, माशरत की, मईशत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। उस पर जब आप अमल करोगे तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर होगी और तुम्हें महसूस होगा कि हुजूर हमें क्या क्या तरीक़ा दे, क्या क्या तरीका। वो उस वक्त में जबकि हवाई जहाज ईजाद भी नहीं हुआ था, रेल ईजाद भी नहीं हुई थी, मैंने देखा कि मुझे इस पैर की कमजोरी के साथ मुझे वजू करना था हवाई जहाज में, तो वो जो बेसन लगा था उस बेसन पर मैं वजू कर रहा था। अब वजू करते हुए जब मुझे पैर धोने की नौबत आई तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अल्लाह उस वक्त हवाई जहाज था भी नहीं, लेकिन हुजूर की दूर भी आंखें उस वक्त देख रही थी कि वो चमड़े के मोजे पर मसा करने की इजाज़त दे गए हैं, तो आपको बेसन पर पैर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, उंगली गीली करके और पैर से नीचे फेर दीजिए, वरना बेसन तक कैसे पैर को उठा के धो दे। वो जो हाथ धोने का होता है वहाँ तो हवाई जहाज था नहीं कि हुजूर ने वो देखा था तो उन्होंने कहा कि मुझे की इजाज़त दे दे, या रेल देखी थी उसमें ज़रूरत पड़, लेकिन पैगम्बर तो अल्लाह की तरफ से हिदायत पाता। उनकी एक एक चीज में वो हमारी सहूलतें और हमारे लिए आसानियां हैं कि जब हम उस पर अमल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हुजूर हमें क्या देंगे। जब हम अमल ही नहीं करेंगे तो हमें उनके नफे का पता कैसे चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अभी एक आदमी मुझे मिला इसी सफर में, वो मुझे कह रहा था कि मौलाना आप बुखारी का ख़त्म कराने आए थे तो हुजूर की एक दुआ आप बता गए थे कि हुजूर के पास एक सहाबी ने आके कहा कि हजरत बड़ी कड़की बज रही है, बड़ी तंगी चल रही है, पैसा ख़त्म हो चुका, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई बात बता दीजिए कि मुझे खुशहाली मिल जाए। हुजूर ने एक दुआ छोटी सी उसको बताई तो उसने उसको पढ़ना शुरू किया तो इतना मालदार हो गया कि दौलत का गिनना मुश्किल हो गया। वो बात कही मैंने बुखारी के दर्स में कही होगी, अब क्या पता इतने लोगों में कौन बैठा हुआ, वो कोई सुन गया, उसने उस पर अमल किया। उसने मुझे कहा मौलाना उस दुआ को मैं नहीं छोड़ता और पढ़ता हूँ, इतनी दौलत चारों तरफ से आ रही है कि मैं परेशान हूँ, आपने क्या बताया। मैंने कहा नालायक, मैंने बता दिया, वो तो हुजूर ने बताई थी सहाबी को, मैंने तो नक्ल कर दिया है, और तूने उसे मोहब्बत से यकीन के साथ कि हुजूर की बताई हुई बात गलत नहीं हो सकती, उस यकीन के साथ पढ़ा तो उसका तू मुजाहरा कर रहा है, देख रहा है उसको, तू मालदार हो गया, खुदा का शुक्र अदा कर, उसकी ज़कात निकाल। तो अब हुजूर की तो एक एक बात में इतनी हिकमत है, इतने फवायद हैं, काश के हम उनकी अहमियत को समझे और उन्हें पढ़े। ये मैंने अपने ऊपर भी जुल्म किया, मुझसे बोला जाता नहीं है, ज़्यादा बोलो शुगर कम हो जाती है, और ये सफ़र में खाम खां इन लोगों ने ये जलसा गूंथ लिया, रोज़ जलसे होते रहते, कहते रहो अमल तो करते नहीं। अब ये कफील आए, इनकी मोहब्बत की बात थी, इन्होंने कहा आप यहाँ से गुजर रहे हैं दो एक घंटे रुक जाइए, एक जलसा सीरत पर कर लें, आप कुछ बात कहते हैं। तो ये ब्रेक जर्नी में ये सब काम हुआ है, सफ़र तो मुसलसल था ना, इस सफ़र में इसका प्रोग्राम पहले से कोई तय था ना आने का मंशा था। मैं तो आता हूँ मदरसा देख के खुश हो जाता हूँ, कोई बात अच्छी आती है तो इन्हें समझा जाता हूँ। इसकी दागबेल डालने में भी मैंने ही मशवरा दिया था कि वही गुनाह में कोई नहीं है, मस्जिद है वो मंसूरी मस्जिद, उसमें ऊपर हॉल है उसमें शुरू कर दो। वो एक साहब को ज़बरदस्ती बिठाया कि तुम शुरू करो, बच्चे आएंगे पढ़ाना, मस्जिद वालों से भी कहा, उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया, अल्लाह के फजल से 40 बच्चे वहाँ से करने लगे। फिर वहाँ कुछ बातें ऐसी हुई कि वहाँ मदरसा रखना मुश्किल था, इन लोगों से मैंने कहा अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, थोड़ी सी ज़मीन ममीन कर लो, कुछ इमारत बना लो। तो इन लोगों ने हिम्मत की, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये मदरसा बन गया। मैं भी आते जाते देखता हूँ तो मेरा दिल खुश होता है कि वही बात मानी शुरू कर दिया, तो आज 70-80 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, कुरान सही कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अगर ये सहूलतें इनको नसीब रही, अच्छे असातिज़ा फराहम हुए, ज़रूरतें आएँ, तो फिर पूरी होंगी तो और बच्चे पढ़ेंगे, आपको हुफाज मिलेंगे, कुर्रा मिलेंगे, आइम्मा मिलेंगे, खतीब मिलेंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, जैसे डॉक्टर की ज़रूरत है वैसे इमाम की भी ज़रूरत है। आपका ये समझना कि नहीं हमें डॉक्टर की ज़रूरत है इमाम की ज़रूरत नहीं, ये गलत है, इमाम की भी ज़रूरत है, नहीं नमाज कैसे पढ़ेंगे। अल्लाह हम सबको मदारिस के साथ, उलमा के साथ, कुरान के साथ, हुजूर के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और अपने बच्चों को दीनी तालीम देने का शौक अता फरमाए, तबलीग में निकल कर अपनी ज़िंदगियाँ अच्छी बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ खाने पीने मकान बनाने को काफ़ी न समझें, मकान तो अल्लाह के यहाँ ऐसा मिलेगा जो कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा, वैसा इंशाअल्लाह वहाँ मिलेगा। यहाँ तो ज़िंदगी गुजारनी है, लस्तम फस्तम गुजरी जाती है, और जो वहाँ की ज़िंदगी के लिए काम करे अल्लाह यहाँ भी अच्छा बनवा देंगे उसको, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, वो यहाँ भी बनवा देंगे। तुम वहाँ की फिक्र करो, यहाँ की फिक्र वो रूंगन में ठीक कर देंगे। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعليه واصحابه واهل بيته وذرياته اجمعين برحمتك يا رحمن.